रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी मित्रों को लीना मेहंदले का नमस्कार। आज के रविवार के कार्यक्रम में हम फिर एक बार पढ़ेंगे संस्कृत अपने प्रिय कार्यक्रम पठामी संस्कृतम में। मित्रों, मैं पहले भी एक दो बार तुम्हारे लिए सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थानम वाराणसी की पुस्तकों में से कुछ पाठ लेकर के आई थी और आज भी मैं वही करने जा रही हूँ। इन्हीं के पुस्तक में से एक पाठ मैंने आज के लिए चुना है जो कि श्री वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी ने लिखा है। और शास्त्री जी ने अपने जीवन काल में बहुत प्रयास किए ताकि संस्कृत घर घर तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, और इस बात को लेकर के उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जो बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही मनोरंजनात्मक तरीके से और बहुत ही सुगम तरीके से, जिसमें समझना सीखना संभव हो, इस प्रकार से उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। तो आज भी हम उनकी पुस्तक संस्कृत प्रचार पुस्तक माला संख्या 40 और जिसका नाम उन्होंने दीप मालिका रखा है, जो कि अनुप्रास मई, ये खुद उन्होंने वर्णन किया है कि यह पूरी की पूरी पुस्तक अनुप्रास मई अर्थात तुक मिलाने वाली, इस प्रकार ये पूर्ण पुस्तक है। तो इसी में से आज मैंने कुछ पाठ चुने हैं। और अगर कोई शब्द प्रभु हो अर्थात जिसका शब्द भंडार बहुत सुगठित हो, बहुत समृद्ध हो, तो इस बड़े शब्द भंडार की सहायता से किस प्रकार छोटी छोटी बातों में भी रस और आनंद उत्पन्न किया जा सकता है, इसका ये एक उत्तम उदाहरण है यह पुस्तक, जिसमें से आज हम कुछ वाक्य देखेंगे जिन वाक्यों में उन्होंने तुक मिलाए हुए हैं। तो सबसे पहले तो श्री वासुदेव शास्त्री जी को नमन करते हुए और उनकी जो प्रकाशन संस्था है सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थानम वाराणसी, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं आज उनकी पुस्तक में से ये कुछ वाक्य, छंदोबद्ध वाक्य या तुकबंदी किए हुए वाक्य, अनुप्रास युक्त वाक्य मैं तुम सबों के सामने रख रही हूँ। आओ देखते हैं। ये लिखते हैं, सौजन्यम पर्जन्य इव परम आह्लादकम भवति। सौजन्य अर्थात कोई व्यक्ति आपसे सज्जनता के साथ पेश आए, सौजन्य दिखाए, तो उससे उसी प्रकार हमें आह्लाद मिलता है, उसी प्रकार हमारे मन में आह्लाद उत्पन्न होता है जिस प्रकार पर्जन्य अर्थात जब बारिश आती है, पानी बरसता है, तब जिस प्रकार हमारे मन में आह्लाद उत्पन्न होता है, उसी प्रकार किसी की सज्जनता भरी वाणी से भी हमारे मन में आह्लाद उत्पन्न होता है। तो यहाँ शास्त्री जी ने सौजन्य और पर्जन्य दो शब्दों का अनुप्रास कितनी खूबसूरती से किया है। आगे एक जगह वो लिखते हैं, कुलीनानाम शालीनता स्वाभाविकी, अर्थात जो कुलीन हैं, जो अच्छे कुल से आते हैं, उनके अंदर शालीनता स्वाभाविक ही उनके अंदर होती है। तो यहाँ फिर एक बार कुलीन और शालीन का अनुप्रास करके उन्होंने एक सुंदर वाक्य बनाया। अब आगे चलते हैं, समरे शौर्यम बलम भवति, संकटे धैर्यम बलम भवति। देखो कितना सुंदर अनुप्रास मिलाया है कि समरे अर्थात समर में अर्थात युद्ध में शौर्यम बलम भवति, अगर आपके पास शौर्य है, शूरता है, तो वही आपका संबल हो जाती है। और संकटे संकट काल में अगर आपके पास धैर्य है, तो वही धैर्य आपका संबल हो जाता है। तो समरे शौर्यम बलम भवति, संकटे धैर्यम बलम भवति। आगे लिखते हैं, प्रयोगम विना शिक्षायाः किं फलम्, साधनाम विना दीक्षायाः किं फलम्। अर्थात अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे, प्रयोगम विना, प्रयोगों के बिना, शिक्षायाः किं फलम्, शिक्षा का क्या फल है, शिक्षा का फल हम तभी जान सकते हैं जब हम उस शिक्षा के अनुरूप कोई प्रयोग करके देखें। और साधनाम विना दीक्षायाः किम फलम्। अगर हमने किसी से दीक्षा ले भी ली कोई खास बात करने की, कोई खास काम करने की, लेकिन वह साधना नहीं की जो साधना दीक्षा के बाद अपेक्षित है, तो फिर उस दीक्षा लेने का क्या फायदा। काननानी कुसुमानाम हासई ही शोभन्ते, आननानी स्मितानाम विलासई ही शोभन्ते। काननानी, ये बहुवचन हो गया, कानन शब्द का, कानन अर्थात बगीचा या उपवन, तो उपवनों की शोभा कुसुमों से अर्थात फूलों से होती है। और आननानी स्मितानाम विलासई ही शोभन्ते, आनन अर्थात मुख, तो हमारा मुंह या हमारा मुख कब शोभित होता है, जब उस पर स्मित हो, अर्थात जब हम मुस्कुराते हों तब हमारा चेहरा, हमारे चेहरे, आननानी बहुवचन है, तो जब हम मुस्कुराते हैं तब हमारे चेहरे अधिक सुशोभित होते हैं। ऐसे ही एक बहुत सुंदर अनुप्रास सरल सा बनाया है कि भोजनम विना भजनम न भवति, मंत्रम विना यजनम न भवति। भोजन के बिना भजन नहीं होता है और मंत्र के बिना यजन अर्थात यज्ञ करना, याग करना, पूजा करना, इन बातों को यजन कहते हैं। तो मंत्र के बिना यजन नहीं होता है और भोजन के बिना भजन नहीं होता है। कह समुद्रम मथनाति, कह मारुतम बधनाति, अर्थात समुद्र को कौन मथ सकता है और मारुत अर्थात पवन को, हवा को कौन बांध सकता है। तो ये सुंदर सा अनुप्रास है फिर से, कह समुद्रम मथनाति, कह मारुतम बधनाति। आगे तीन तीन पंक्तियों के कुछ अनुप्रास शास्त्री जी ने बनाए हैं जो बहुत सुंदर है, तो इसका हम आनंद उठाते हैं। यदि मनसः कालुष्यम न गतम, यदि वचसः पारुष्यम न गतम, तदा देहिनाम मानुष्यम किमर्थम। तो बहुत सरल अर्थ है, इसको समझने से इसका आनंद उठा सकेंगे हम। यदि मनसः अर्थात यदि हमारे मन से कालुष्यम न गतम, कलुषता कालापन बुराई अगर हमारे मन से नहीं गई, न गतम, और यदि वचसः पारुष्यम न गतम, और अगर हमारी वाणी से पारुष्य अर्थात कठिनता, अभद्रता, यह अगर हमारे वचनों में से नहीं गई, अर्थात अगर हमारे वचन कोमल नहीं हुए, कठिन हुए, कड़ाई से बोले गए, दूसरों को दुख पहुंचाने वाले वचन हमसे बोले गए, पारुष्यमय वचन हमसे बोले गए, वह पारुष्य हमारे वचनों में से अगर नहीं गया, तो तदा देही नाम मानुष्यम किमर्थम, तो फिर हमारी देह को मनुष्य कहलाने का क्या प्रयोजन है। मनुष्यता हमारी इन बातों से चली जाती है, अगर हमारा मन कलुषित हो या अगर हमारे वचन पारुष्यमय हो, कठिन हो, कड़ी बातें अगर हम करें, तो फिर हमारी मनुष्यता भी लोप हो जाती है। तो यहाँ बहुत सुंदर कालुष्य, पारुष्य, मानुष्य, इस प्रकार से एक अनुप्रास शास्त्री जी ने हमारे सामने रखा है। आगे शास्त्री जी लिखते हैं, राग रहिता गायकाः, न्याय रहिता नायकाः, लोकप्रिया न भवन्ति। अगर कोई गायक हो, गायक हों जो बिना राग को समझे ही गा रहे हों, या कोई नायक हो, नेता हो, और वह बिना न्याय को समझे लोगों से अपनी बात मनवाता हो, अर्थात उसे न्याय करने नहीं आता हो, वह अगर न्याय रहित हो, तो ऐसे गायक और ऐसे नेतागण लोकप्रिया न भवन्ति, वे लोकप्रिय नहीं हो सकते हैं, नहीं होते हैं। अब एक और अनुप्रास सुनो, कार्यार्थिनाम क्षणमपि बहुमूल्यं भवति, धान्यार्थिनां कणमपि बहुमूल्यं भवति, द्रव्यार्थिनां पणमपि बहुमूल्यं भवति। तो देखो कितने सुंदर अनुप्रास लिए हैं कि कार्यार्थी, धान्यार्थी, द्रव्यार्थी और क्षणम, कणम और पणम। कार्यार्थी जो है अर्थात जिसे काम करना है उसके लिए एक एक क्षण भी बहुमूल्य है। जो धान्यार्थी है अर्थात जो धान उगाने वाला है उसके लिए एक एक कण भी बहुमूल्य है। और जो द्रव्यार्थी है अर्थात जो अपने परिश्रम से पैसे कमा रहा हो उस द्रव्यार्थी के लिए पणम अपि अर्थात एक छोटा सा सिक्का भी बहुमूल्य होता है। इसी बात पे मुझे एक बहुत सुंदर श्लोक याद आता है कि क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थञ्च चिन्तयेत्, क्षणत्यागे कुतो विद्या, कणत्यागे कुतो धनम्। अर्थात हर क्षण और हर कण में हमें विद्या और धन को देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए, उसी का चिंतन करना चाहिए, चिंतयेत उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। हर क्षण में विद्या का चिंतन करना चाहिए और हर कण को देख करके धन का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि क्षणत्यागे कुतो विद्या, अगर हमने उस क्षण को जाने दिया, उसे बर्बाद होने दिया तो फिर विद्या नहीं आएगी, और अगर उस कण को जाने दिया, उसे अगर बर्बाद होने दिया तो फिर धन नहीं आएगा। अर्थात विद्या की प्राप्ति अगर हमारा लक्ष्य हो तो हमें हर क्षण को उपयोग में ला करके विद्या प्राप्ति करनी है, और अगर धन प्राप्ति हमारा उद्देश्य हो तो हर कण को बचा बचा करके हमें धन संचय करना है। यही इस श्लोक का अर्थ है। मित्रों, हम इसी श्लोक के साथ आज का पठामी संस्कृतम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। आप सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो, हमें SMS भेजते रहो, संस्कृत पढ़ते रहो और कहो जयतु संस्कृतम। नमस्कार।